ओम शांति। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले एक बार इस धरती पर रंगों में विवाद हो गया। हर एक रंग ये कहने लगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। सबसे पहले हरा रंग, हरे रंग ने कहा कि सारी धरती, ये सारे वृक्ष, ये हरियाली, ये सब मैं ही हूं। अगर इस धरती पर यदि यह हरियाली, ये झाड़, ये पत्ते नहीं हो तो धरती का क्या हाल हो जाए। इसलिए मैं ही सर्वोपरि हूं। नीले रंग ने कहा, आसमानी रंग ने, कि तुम केवल नीचे की बातें कर रहे हो, ऊपर तो देखो कौन है। चहुं और मैं ही छाया हुआ हूं, चारों तरफ नीलांबर ही नीलांबर, और उसकी प्रतिबिंब समुद्र पर, सारा के सारा समुद्र भी नीला ही नीला। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। लाल ने कहा, कम से कम अपने अंदर तो झांको, मनुष्य के अंदर, अंदर कौन है। रक्त केवल लाल ही लाल, जो जीवन है, जो प्राण है, वो रक्त है। फूलों को तो देखो, गुलाब को देखो, लाल ही लाल। इसके लिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। नारंगी रंग, नारंगी ने कहा, तुम बहुत छोटी बातें करते हो, सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं, क्योंकि मैं स्वास्थ्य का प्रतीक हूं। देखो कितने सारे फल मेरा ही रूप धारण किए हुए हैं। मैं प्रतीक हूं सूर्योदय का, सूर्यास्त का। मेरा ही सौंदर्य सूर्योदय और सूर्यास्त में है। तब तो तुम सब खो जाते हो, मैं ही मैं बचता हूं। पीले रंग ने कहा, एक नजर राजा महाराजाओं के तो तरफ तो दौड़ाओ, वस्त्र कौन से पहनते हैं। एक तरफ सूर्य की तरफ तो देखो, तारों की तरफ तो देखो, सब पीले ही पीले। उसके बाद बैगनी कलर, वायलेट या पर्पल कलर रंग कहता है, मैं सत्ता का प्रतीक हूं, मैं पावर अथॉरिटी का प्रतीक हूं। मुझ में वार्मथ, फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस समाई हुई है। इसके लिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। और फिर अंतिम रंग होता है इंडिगो, नील, गहरा नीला। वो कहता है, तुम सारी जो बातें कर रहे हो, बाहर की बातें कर रहे हो, मैं प्रतीक हूं संकल्प का, विचार का, रिफ्लेक्शन का, थॉट का। इसके लिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। और जब इन रंगों में इस तरह से विवाद होते रहता है, अचानक बारिश हो जाती है, घनघोर बारिश, बिजलियां कड़कने लगती है, घने बादल घिराते हैं, और वो बारिश इन रंगों से कहती है, अरे मूर्खो, क्यों आपस में लड़ रहे हो। तुम एक एक उस परमात्मा की रचना हो, एक एक अद्भुत है, अद्वितीय है। और वो बारिश उनसे कहती है, आओ मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ। और वो सारे रंग बारिश का हाथ पकड़ते हैं, आकाश में जाते हैं और एक धनुष बाण की तरह बिखर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां ऊपर, और एक अति सुंदर इंद्रधनुष रेनबो आकाश में निर्माण होता है। ये रचना, ये कहानी भारत में जन्मी और लंदन में पली 19वीं शताब्दी का की एक इतिहासकार एनी होप ने लिखी है, जिसमें उसने बताया कि सब जब एक हो जाए तो कितना सुंदर इंद्रधनुष निर्माण होता है। अभी अभी हमने होली मनाई, रंगों का त्योहार, और आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने एक एक ब्राह्मण आत्मा के हृदय की भूमि पर ज्ञान की वर्षा की है और एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष निर्माण किया है आकाश में, मन के आकाश में। तो आज हम इसी इंद्रधनुष के सप्त रंगों की चर्चा करेंगे। ऐसे सात रंग जो भगवान ने ज्ञान की बारिश की, उसके बाद जो मन के आकाश में जो इंद्रधनुष छा गया, तन गया, ऐसे सात रंग, सप्त रंगी इंद्रधनुष। होली में भी रंगों को एक दूसरे पर लगाया जाता है, रंगों का त्योहार। तो ये जैसे कि एक स्पिरिचुअल होली कहो या स्पिरिचुअल रेनबो, जिसकी आज की मुरली में पापा ने चर्चा की है। रंग शब्द मुरली में कहीं नहीं आया है, ना ही इंद्रधनुष और ना ही होली, परंतु ऐसे सतरंग सप्तरंग बाबा ने आकर हम आत्माओं को लगाए हैं। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला रंग कौन सा? कौन सा रंग आज की मुरली से? एक मुरली है और पांच छह पार्टियां है, ऐसे सात रंग। सबसे पहला स्व परिवर्तन का रंग। सबसे पहला रंग कौन सा? स्व परिवर्तन का रंग। और परमात्मा संसार में आए और उसने आत्मा को स्व परिवर्तन का रंग लगा दिया। इसमें मुख्य रूप से चार बातों की चर्चा बाबा ने की है। सबसे पहली संपूर्ण स्वतंत्रता, दूसरी संतुष्टता, तीसरी तैयारी, और चौथी अचल अडोलता। स्व परिवर्तन का रंग आत्मा में तब लगेगा जब ये चार बातें होगी। तब सबसे पहले बताया संपूर्ण स्वतंत्र। यदि पंख चिपके हुए हैं तोड़ नहीं सकेंगे, यदि लगाव की रस्सी आत्मा को बांधे हुए है उड़ नहीं सकेंगे, और लगाव केवल संबंधों में नहीं, लगाव स्थूल वस्तु में भी हो सकता है, पहनने की वस्तु में भी हो सकता है और खाने की चीज में भी हो सकता है। वो स्थूल लगाव, वो छोटा लगाव भी बड़ा अनुभव हो सकता है, और आत्मा उड़ नहीं सकेगी। लगाव आत्मा को बांधे हुए है, चिपकाए हुए है, चिपक गए हैं पंख। स्व परिवर्तन का रंग यदि आत्मा को लगना है तो पहली मुख्य धारणा है स्वतंत्रता, स्वयं को मुक्त करना बंधनों से, गुलामी से, दासता से, पिंजड़े से, सलाखों से, निर्भरता से, इन सभी से स्वयं को मुक्त करना अर्थात स्व परिवर्तन का स्वयं को रंग लगाना। आत्मा मुक्त जब है तभी शक्तिशाली है, जब जब आत्मा बंधी हुई है किसी के मोह में, किसी के प्यार में, किसी देहधारी में फंसी हुई है, ऐसी फंसी हुई आत्मा जहां पंख चिपके हुए हैं, जहां मोह की रस्सी आत्मा को बांधे हुए है, कैसे उड़ सकेगी आत्मा, कैसे इस मन के आकाश में वह सतरंगी सप्तरंग वाला इंद्रधनुष लहराएगा। स्वतंत्र करना पड़ेगा उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लगाव के, आत्मा विमुक्त होकर उड़ने लगे। तो स्व परिवर्तन के रंग में पहली चीज क्या है? स्वतंत्रता। दूसरी है संतुष्टता। संतुष्टता के लिए तीन प्रश्न बाबा ने पूछे हैं। पहला, स्वयं स्वयं से संतुष्ट हो, स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार से संतुष्ट हो, जिस रफ्तार से पुरुषार्थ अब चल रहा है क्या उससे संतुष्ट हो। दूसरा, क्या दूसरे मुझसे संतुष्ट है, दूसरे मेरी श्रेष्ठ स्थिति का रिस्पॉन्ड कैसे दे रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहो दूसरे मुझसे कितना संतुष्ट है। और तीसरा प्रश्न है सेवा से कितना संतुष्ट हूं, सर्विस सेटिस्फैक्शन, ड्यूटी सेटिस्फैक्शन, या लगता है ये सेवा नहीं वो सेवा ज्यादा अच्छी है, या ये लगता है ये जो दूसरे लोग हैं जिनकी फिक्स ड्यूटी है ये थोड़े ज्यादा सुखी है, या ये लगता है ये दूसरे डिपार्टमेंट वाले उनकी सेवा के वजह से हमसे अधिक अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं और सेवा ही हमारे पुरुषार्थ में बाधा है, और सेवा का ये जो समय है टाइमिंग है शायद यही ठीक नहीं है, शायद ये जो लोग हैं डिपार्टमेंट में दोष उन्हीं का है, गड़बड़ इनमें है। स्वयं को संतुष्ट करना, जब तक ये नहीं होगा स्व परिवर्तन का रंग आत्मा में नहीं लगेगा। जो आत्मा तृप्त रहती है बेचैन रहती है, जो आत्मा वासनाओं से घिरी रहती है, इच्छाओं के तूफान जहां पर निरंतर चित्त को आंदोलित करते हैं, वहां पर कभी भी परमात्मा का यह सप्तरंगी इंद्रधनुष नहीं आ सकता। अतृप्ति संस्कार है, असंतुष्टता संस्कार है, इसका वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं, ना ही स्थान से, ना ही समय से, और ना ही वैभव से, क्योंकि जब सब कुछ नहीं था तब भी अतृप्त थे, और जब एक दिन सब मिल गया तब भी आत्मा पाती है कि अतृप्त ही है, क्योंकि आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास अनंत ही मिटा सकता है। अनंत की तृष्णा आदि अंत वाले व्यक्ति वस्तु वैभव नहीं पूर्ण कर सकते, आत्मा प्यासी है, अनंत की प्यास है उसे, परमात्मा प्रेम के अतिरिक्त आत्मा को कुछ भी भर नहीं सकता, खाली ही रहेगी, मनुष्य का प्रेम उसे और खाली करेगा, लगाव उसकी ऊर्जा को और खत्म करेगा। तो दूसरा स्व परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन करना है? अतृप्ति को हटाना है। क्या कारण है अतृप्ति का? कौन सा वो अतृप्ति का गहरे में गहरे अवचेतन मन में छिपा हुआ कारण है? उसको ढूंढ कर उसको समाप्त करो। एक फकीर जिसके पास बहुत सुंदर बगीचा था, जो किसी उसके भगत ने दिया था। फकीर का मरने का समय समीप आ गया था। उसने सोचा, मैं इस बगीचे का करूं क्या जहां पर इतने सुंदर फल है, वृक्ष है, फूल है। वो एक तख्ती लगा देता है कि इस संसार में जो व्यक्ति संतुष्ट होगा ये बगीचा मैं उसके नाम करता हूं। हजारों लोग उसके पास आते हैं मिलने, समय उसके पास थोड़ा होता है क्योंकि मरणासन्न है, परंतु वो सबसे जो भी प्रश्न पूछता है सभी उन प्रश्नों के उत्तर देने में विफल होते हैं और वो किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दे पाता कि ये तृप्त है। उस देश का राजा संपन्न व्यक्ति था, उदार हृदय था। वो जब ये सुनता है कि ऐसा ऐसा फकीर और वो फकीर का बगीचा है, कितने शुद्ध वाइब्रेशंस उसमें होंगे। वो सोचता है इसको मैं खरीदूंगा। और रही बात संतुष्टता की, तो मेरे पास तो ऐसा संसार में कुछ है ही नहीं जो मुझे चाहिए, नहीं, सब कुछ प्राप्त है। तो वो फकीर के द्वार पर आकर पहुंचता है और फकीर से कहता है कि मैं इस संसार का सबसे संतुष्ट व्यक्ति हूं, आप ये बगीचा मेरे नाम कर दो। फकीर कहता है, यदि तुम संतुष्ट होते तो यहां क्यों आए फिर? तुम यहां आए अर्थात तुम अतृप्त हो। जो तृप्त है और जो भरा हुआ है वो कभी हाथ नहीं फैलाएगा। किसी भी चीज के लिए ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, ना रिकॉग्निशन चाहिए, ना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ना चाहिए कि दुनिया वाले हमको जाने और ये समझे, ना ये समझता है कि ये सेवा मैं कर रहा हूं। आध्यात्मिक गरीबी है, स्पिरिचुअल पॉवर्टी। परमात्मा का राज्य में यदि हम भिखारी ही रह जाए तो क्या कहेंगे? अस्तित्व संपन्न है, एग्जिस्टेंस इज रिच, देन व्हाई द स्पिरिचुअल पॉवर्टी? तीसरी चीज है तैयारी। तीसरी चीज है तैयारी। बाबा ने प्रश्न पूछा है, तैयार हो बाप के साथ चलने के लिए? साकार लोक में, साकार तन में बाबा आए हैं और क्या देख रहे हैं? यहां आकर हलचल की दुनिया देख रहे हैं, इस दुनिया की रौनक देख रहे हैं, ये नजारे दिखाई दे रहे हैं बाबा को, हलचल की दुनिया। यहां पर ब्रह्मा बाप बीच में कह रहे हैं कि बाप को क्या लगता है, कौन सी बात पसंद है, यहीं रहना है कि साथ चलना है? इस हलचल की दुनिया में देखते हुए क्या याद आना चाहिए? दो चीजें, स्वीट निर्विघ्न राजधानी, स्वीट अचल घर। ये देखते हुए वो याद आए, क्या स्वयं को ऐसा तैयार किया है चलने के लिए, जाने के लिए रस्सियां बांधी हुई तो नहीं है? क्या कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है? बिना कर्मातीत हुए आप आत्मा नहीं जा सकती। और स्वयं तैयार और कुछ आत्माओं को भी तैयार करना है। कौन सी चार प्रकार की आत्माएं जिन्हें साथ ले चलना है तैयार करके? राज्य अधिकारी आत्माएं, माताएं, कौन सी? सबने मुरली सुनी है ना? कौन सी आत्माएं? रॉयल फैमिली की आत्माएं, साधारण प्रजा, रॉयल प्रजा, इन सबको संख्या प्रमाण तैयार किया है? तब तक जा नहीं सकेंगे जब तक संपन्न नहीं, तब तक जा नहीं सकेंगे तब तक तैयार नहीं। और तैयारी अगर चाहिए, पूरी तैयारी चाहिए, फिर ये नहीं कहो कि सोच तो नहीं रहे हो कोई छूमंतर हो जाए। शिव मंत्र ही क्या है? छूमंतर। शिव मंत्र ही छूमंतर है, मनन ही छूमंतर है, साक्षी स्थिति ही छूमंतर है, बाप का साथ ही शिव मंत्र या छूमंतर है, न्यारापन ही छूमंतर है, मन मना भाव ही छूमंतर है। वरदान ही छू मंत्र है, स्वमान ही छू मंत्र है। तो स्व परिवर्तन में तीसरी बात है तैयारी, जाने की तैयारी। तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारी नाव खड़ी है, तुम्हारी नैया अब निकल पड़ी है, तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। साकार मुरली के महावाक्य है, उन लोगों की नैया उधर खड़ी है, तुम्हारी निकल चुकी है, लंगर उठ चुके हैं, तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। चौथी बात, स्व परिवर्तन के रंग में अचलता, अडोलता। हलचल की दुनिया, खलबली की दुनिया है, डिस्टर्बेंस की दुनिया है, अनित्य सुखम लोकम, अराजकता की दुनिया है, खलबली मची हुई है हर जगह, हड़कंप है सब जगह, कप रहे हैं लोग, दुखों की दुनिया है, दुखों की महफिल है। ऐसी दुनिया में बाप आते हैं, हलचल ही हलचल, टेंट हिले या दिल भी हिला। बाबा ने प्रश्न पूछा है, क्या हिला, टेंट या दिल? और दिल, दिल भी थोड़ा थोड़ा हिला, तब तो संकल्प आ रहा है यहां से भाग जाने का, बाबा ने पूछा है। आबू का मानसून, पहाड़ों की बारिश, रमणीकता, रमणीक दृश्य और रमणीक समाचार जाके सुनाओगे, अच्छा है लास्ट दिन में आई, और अच्छा है कुछ तो हुआ सुनाने के लिए, अच्छा रमणीक समाचार तो मिला। टेंट में जो रहने वाले वो क्या बन जाएंगे, और जिनके टेंट ही उड़ गए वो क्या बन जाएंगे, महासेंट। ये कुछ भी नहीं, अव्यक्त महावाक्य मुरली में आज, ये कुछ भी नहीं है, और बहुत कुछ देखना बाकी है। 83 की मुरली, ये कुछ भी नहीं है, टेंट उड़ गए। तो स्व परिवर्तन में, स्व परिवर्तन का रंग आत्मा में लग जाए, इसके लिए चार चीजों को अपने अंदर धारण करना है। सबसे पहले स्वयं को लगाव से मुक्त करना, स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? संपूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम। जरा भी लगाव रहेगा, जरा भी रस्सी रहेगी तो खींच लेगी नीचे, पंख को काट देगी और तूफान लाएंगे। डगमगाना नहीं है, पर तूफान बहुत आएंगे। कल की साकार मुरली, तुम्हें डगमगाना नहीं है, सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन हो जाएगी, परंतु बाप को याद करना नहीं भूलना, डगमगाना नहीं। वो टेंट उड़ गए तो चलेगा, पर वासनाओं की आंधी जब चलती है तब श्रीमत के टेंट ना उड़ जाए। विकारों के तूफान जब आते हैं तब परमात्मा प्रेम की छत्र छाया के टेंट ना उड़ जाए। एक किसान के पास एक व्यक्ति आया, किसान को अपने खेत की देखभाल करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। उस व्यक्ति को पूछा कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इतना बड़ा खेत, इतने बड़े खलियान, इतने मवेशी, इतनी गाय बकरियां, इतना बड़ा ये जो फैला हुआ विस्तार है खेत का, तुम देख पाओगे, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? वो कहता है, आई कैन स्लीप थ्रू अ स्टॉर्म, तूफानों में मैं निश्चिंत होकर सो सकता हूं। अजीब सी बात कहता है, किसान को लगता है, परंतु आदमी की भाषा में थोड़ा दम है, कुछ तो लग रहा है। वो कहता है ठीक है तुमको रख लिया, और उसको काम पे रख देते हैं। और एक दिन कुछ समय के बाद अचानक से, जब किसान और उसकी पत्नी और बच्चे अपने मकान में सोए हुए होते हैं, तो अचानक से जबरदस्त तूफान आता है। और तूफान आकर वो घबरा जाते हैं, ऐसा तूफान उन्होंने कभी नहीं देखा होता, ऐसी गड़गड़ाहट बादल की। तो वो सब बाहर निकलते हैं और देखते हैं इतना तूफान, और वो ढूंढते हैं उस व्यक्ति को जिसके जिसको इस काम में रखा हुआ है, तो पाते हैं वो आराम से मस्ती में सोया पड़ा हुआ है। वो कहते हैं इस काम के लिए रखा था क्या इस व्यक्ति को, ये आराम से सोया पड़ा है। वो भागता है, किसान देखता है और बाहर जाके देखता है कि सारे जो मवेशी, सारे जो जानवर होते हैं, आराम से निश्चिंतता से अंदर सोए हुए हैं। जो भी खेत की फसलें हैं, सारी अच्छे से बांधी हुई है तिरपल और अंदर रखी हुई है। जो ट्रैक्टर था वो बराबर गैराज में है अंदर। जो शटर थे बाहर खलियानों के, वहां पर वो सारे बंद है, लॉक्ड है। हर चीज इतनी अच्छी से रखी हुई है कि इस तूफान का और इस बारिश का जैसे कुछ असर ही नहीं। और ये सारी तैयारी किसने करके रखी थी, उस व्यक्ति ने। तब उस किसान को समझ में आता है, उसने जो कहा था, आई कैन स्लीप थ्रू अ स्टॉर्म, अर्थात मैं तूफानों में भी आराम से सो सकता हूं। और तूफानों में आराम से वो सो सकते हैं जिनकी तैयारी पहले से हो गई है। तो तैयारी और अचलता, तैयारी और अडोलता, यह है सबसे पहला रंग, स्व परिवर्तन का रंग, जो स्वयं को लगाना है। मुक्त करते जाओ, अतृप्ति का कारण ढूंढो, कौन है, क्यों है, कहां से है, उगम स्थान क्या है, अप्राप्ति की गंगोत्री कहां से बह रही है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो है। दमित भावनाएं और दमित वासनाएं जो मन को अतृप्त किए हुए है, और वह अतृप्ति, वो तृष्णा ही बेचैनी उत्पन्न करती है, सोने नहीं देती है। हाँ, अगर अतृप्ति चाहिए तो एक अतृप्ति रहे, वो है डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवी असंतोष। किसके प्रति? पुरुषार्थ के प्रति, कि जितना कर रहे उतना काफी नहीं है और बहुत करना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी कोई अमृत वेला है, जरा सा अनुभव हो गया और खुश हो गए, ये भी कोई मुरली का चिंतन है, जरा सा चिंतन क्या कर लिया और खुश हो गए, ये भी कोई तृप्ति है कि सेवाएं कर ली और लगा कि हमने बहुत सेवाएं कर ली। अरे यज्ञ में दादियों ने और ब्रह्मा ने और मम्मा ने अपनी हड्डियां दे दी है, उनके त्याग और उनके बलिदान के आगे अभी जो आए हैं उनकी सेवाएं क्या है। अतृप्ति चाहिए तो यहां कि मुझे और करना है, जितनी धारणाएं की है क्या ये पूर्ण हो गई। एक दिन भी अगर अपवित्रता है तो किसकी लिस्ट में चले जाओगे? अपवित्र के लिस्ट में चले जाओगे। कुछ घंटे वाले योगी नहीं, निरंतर योगी। ये वरदान भगवान ने आकर दिया है, कितना धारण किया है, कितना अनुभव किया है, कितना मन में, हृदय में जैसे भोजन समा जाए इस शरीर में, वैसे यह ज्ञान रक्त की धमनियों में रक्त बनकर बह रहा है। या केवल ऊपर ऊपर, और कहते हैं हम तृप्त है, हम संतुष्ट है, सब ठीक चल रहा है। ठीक तब चलेगा, सो तब चलेंगे, परंतु तूफान आएगा तो सब कुछ उड़ा लेगा। सो तब सकेंगे तूफानों में भी, जब सारे दिन भर उसकी तैयारी कर रखी है, नहीं तो एक विकार जिसको छोड़ा हुआ है अचानक प्रकट होगा और गिरा देगा और बाहर ले जाएगा सारे ज्ञान और योग के जो छोटे छोटे मकान बना के रखे थे। तो पहला रंग है स्व परिवर्तन का रंग, दूसरा रंग साक्षी स्थिति का रंग। इंद्रधनुष निर्माण करना है यदि मन के आंगन में, मन के आकाश में, मन की भूमि के ऊपर, तो साक्षी होना होगा। यही अंतिम पाठ है, यही मूल अभ्यास है, यही प्रथम अभ्यास है। पहला पाठ और अंतिम पाठ मूल अभ्यास यही है। यदि साक्षी हो तो क्या क्या हो जाएगा? सबने मुरली सुनिए, बताओ क्या हो जाएंगे? हीरो बन जाएंगे या हीरोइन? क्या बनना है, हीरो या हीरोइन? हीरा बनना है, दोनों छोड़ दो, हीरा बन जाएंगे तो अपने आप बन जाएंगे। तो जब साक्षी होकर देखेंगे चीजों को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, माया को, ड्रामा को, सृष्टि चक्र को, 5000 साल की इन सीढ़ियों को, भगवान को, भगवान के पार्ट को, स्वयं को, विकारों को, सबको साक्षी होकर जब देखेंगे, अचल अडोल रहेंगे, हीरे तुल्य जीवन होगा, अर्थात श्रेष्ठ स्थिति होगी हीरे जैसी, और हीरो पार्ट भी होगा, डबल हीरा बन जाएंगे, डबल हीरो बन जाएंगे। पहला, दूसरा, साक्षी रहेंगे तो क्या होगा? मुश्किलात नहीं, कोई विघ्न नहीं, हलचल की परिस्थिति में भी अचल रहेंगे। और विजयी होंगे, और न्यारे प्यारे, और मुरली में क्या बताया है? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। देह से न्यारेपन की स्मृति अर्थात मालिकपन की स्मृति होगी। चार बातें बताई है, चार या पांच। सबसे पहला तो साक्षी अर्थात डबल हीरो, साक्षी अर्थात मालिक, साक्षी अर्थात अचल, साक्षी अर्थात विघ्न मुश्किलात नहीं आ सकते। साक्षी होकर देख रही है आत्मा हर चीज को, प्रभावित नहीं हो रही है, पता है खेल है। जैसे एक व्यक्ति था, गुप्त योगी था, बाहर से नहीं किसी को पता। उसके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था, ऐसा घोड़ा कि जो सम्राट भी चाहता था कि मुझे ऐसा घोड़ा मिल जाए, परंतु वो बेचने को राजी नहीं था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया, सारे गांव वाले आ गए दुख शोक मनाने, सांत्वना देने के लिए कि तुम्हारा इतना अच्छा घोड़ा भाग गया। वो कहता है अच्छा, मे भी, कहानी का नाम ही है मे भी, शायद। कहते हुए कि तुमको बहुत दुख हुआ होगा, वो कहता है शायद। उसको कोई प्रभावित नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, घोड़ा भाग गया। कुछ दिनों के बाद घोड़ा वापस आता है, पर अपने साथ और बहुत सारे घोड़ियों को लेकर आता है, जंगली, तो सारे गांव फिर से आते हैं। कितनी अच्छी बात है, गुड न्यूज, कि एक घोड़ा तो चला गया, इतने सारे अब तुमको मिल गया, तुम तो बहुत खुश होना चाहिए, तुम तो खुश ही होंगे। वो कहता है मे भी, शायद। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा एक घोड़े पर बैठने जाता है, पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, फिर से सारा गांव आ जाता है दुख मनाने के लिए कि बहुत बुरी बात हुई, ऐसी बात किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा इतना अच्छा जवान बेटा, उसका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, हम सब तुम्हारे साथ है दुख में। वो कहता है दुख? हाँ, कहते हैं आपको दुख तो हुआ होगा ना। वो कहता है मे भी, शायद। और वो अपने काम में लग जाता है, लोगों को लगता है कैसा पिता है, बेटे का पैर फ्रैक्चर हुआ तभी भी दुख नहीं हुआ, तब बात और थी, वो घोड़ा चला गया था, अब तो बेटा है। कुछ दिनों के बाद उस राज्य पर आक्रमण हो जाता है, राजा आदेश देता है कि जितने नौजवान होंगे सबको पकड़ के लाओ सेना में भर्ती करने के लिए। उसके घर आते तो देखता इसका तो पैर टूटा हुआ है बेटे का, इसको छोड़ दो। फिर से सारा गांव आ जाता है कि अच्छी बात है तुम्हारा बेटा नहीं गया, तुमको तो खुशी होगी। वो कहता है मैं भी शायद। ये अवस्था है साक्षी की, चीजें सुख और दुख की लहरें आ रही है और जा रही है, वो प्रभावित है। दूसरा रंग कौन सा लगाना है? साक्षी स्थिति का। 24 घंटे में कम से कम दो बार, कितनी बार? दो बार इस ड्रामा की सारी पॉइंट्स बुद्धि के सामने लानी है। ड्रामा कैसा है? एक्यूरेट है। ड्रामा में किसी की कोई गलती नहीं। ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। ड्रामा टिक टिक चलती रहती है। ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। ड्रामा रहस्यमय है। ड्रामा ये ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम बच्चों को भी पसंद आना चाहिए। प्रश्न का उत्तर था साकार मुरली में। यह ड्रामा अदली बदली नहीं हो सकती। यह ड्रामा टिक टिक चालू रहती है। यह ड्रामा, बोलो ड्रामा की पॉइंट, रिपीट होता है। इस ड्रामा में नथिंग न्यू। यह ड्रामा बना बनाया है। यह ड्रामा न्यायकारी है। यहां किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। जिसने जो किया है उसको वही मिल रहा है। किसी को सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं। जिसको नहीं मिल रहा है शायद कर्म भी ऐसे थे। परंतु स्व पुरुषार्थ से ड्रामा को भी बदला जा सकता है। और ड्रामा अर्थात जैसे बाप इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, जैसे बाप को ये सारे नजारे खेल लगते, वैसे तुम भी इस ड्रामा को साक्षी होकर देखो। और ये ड्रामा कैसा है? बहुत ही अच्छा है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो तो बात ही मत पूछो जो होने वाला है। इतनी खुशी से पागल हो रहा है, इतना अच्छा होने वाला है। एक अंग्रेजी ऑथर लिखता है, When I see my future, it is so bright that it dazzles my eyes. मैं अपने भविष्य को देखता हूं तो इतना उज्जवल है, इतना प्रकाशित है कि आंखें चौंधिया जाती है। इतना वो प्रकाश है, मैं कहता हूं बस रुको, इतना प्रकाश दिखता है भविष्य में। तो ड्रामा जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा है। और ड्रामा कल्याणकारी हो गया, एक्यूरेट है। इस ड्रामा में जरा भी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। निर्वेर भाई साहब ने एक बार क्लास में कहा था कि बाबा के पास ऐसे 10-12 ड्रामा आ गए, उसमें से ये ड्रामा चुना, बाकी सब ड्रामा में थोड़ी गड़बड़ थी, कुछ गड़बड़ था, ये ड्रामा सबसे बेस्ट था, परफेक्ट। हर एक एक्टर एक्ट्रेस जो भी है, सीन ये सबसे वंडरफुल है। किसने बनाया था? बनाया भी है और बन रहा भी है। शूटिंग हो गई है एक बार, अभी हो रही भी है और होती भी रहेगी। ये बाबा के अद्भुत हिंदी शब्द है अलग अलग। तो साक्षी, दूसरा रंग कौन सा लगाना है आत्मा को? साक्षी का रंग लगाना है। तीसरा रंग है मनन का रंग। तीसरा रंग मनन, सिमरन, सोचना। बीमार गाय नहीं बनना। जो गाय उगारती नहीं वो बीमार है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। जैसे विष्णु शेष शैया पर लेटा है अनंत आसन में, क्या कर रहा है? ये किसने बताया वो मनन कर रहा है? कहीं लिखा था? विष्णु के फोटो पर तो लिखा नहीं है, वो तो आंखें बंद है उसकी। ये कैसे पता आपको कि मनन ही कर रहा है? शायद कुछ और ही सोच रहा होगा, लक्ष्मी के बारे में सोच रहा होगा, लक्ष्मी के बारे में घूमने जाऊं उसके साथ कहीं, नहीं, पहले ये बताओ कि ये कैसे पता चला कि विष्णु सिमिरन ज्ञान का ही चिंतन कर रहा है? आ? क्योंकि हम ही थे। जैन सभ्यता में एक गुरु थे चांगतसु। चांगतसु एक बार अपने मित्र के साथ जा रहे थे, देखा एक तालाब है जहां पर मछलियां अंदर तैर रही है। वो कहता है देखो मछलियां कितनी खुश है। उसका मित्र कहता है ये तुमको किसने बताया कि मछलियां खुश है? क्या तुम मछली हो? वो खुश है ये तुमको पता कैसे चला? तो क्या उत्तर देना चाहिए उसने? क्या उत्तर दिया होगा? बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वो पूछता है मित्र तुम्हें ये कैसे पता कि मछलियां खुश है? तुम मछली तो हो नहीं। वो कहता है क्या तुम मैं हूं? तुम्हें यह कसब कैसे पता कि मुझे यह पता नहीं कि मछलियां खुश है? क्योंकि तुम तो मैं नहीं हूं ना, तुम अलग हो, तो तुम कैसे जानोगे कि मुझे यह पता नहीं कि मछलियां खुश है? तो विष्णु हमारा यादगार है। सिमरन ज्ञान का मनन करोगे तो क्या क्या हो जाएगा? शक्ति मिल जाएगी, शक्ति भर जाएगी आत्मा में। ज्ञान का मनन करोगे तो मौज, ज्ञान का मनन करोगे तो मनोरंजन, ज्ञान का मनोरंजन कर मनन करोगे तो माया जीत, ज्ञान का मनन करोगे तो निश्चिंत, ज्ञान का मनन करोगे तो ज्ञान अपना बन जाएगा। जैसे भोजन खाते हो तो क्या हो जाता है? जब पच जाता है तब वो रक्त बन जाता है, अपना हिस्सा, अभिन्न अंग बन जाता है, तब फिर वो पृथक नहीं रहता। वैसे इस ज्ञान को अपना बना लो। अभी शायद ये ज्ञान थोड़ा सा दूर दूर है और हम यहां हैं। मुरली सुनी ज्ञान फिर भी दूर, मुरली सुनाई ज्ञान शायद फिर भी दूर, क्लास सुनी फिर भी ज्ञान थोड़ा सा दूर, क्लास कराई फिर भी ज्ञान दूर। अपना कैसे बनेगा? अपना बनेगा चिंतन से, अपना बनेगा मंथन से, अपना बनेगा एकांत में जाकर ज्ञान के चिंतन से। ऊपर ऊपर का चिंतन नहीं, गहरा चिंतन। ये मनन ही आत्मा में शक्ति भरेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, खाली स्पीकर खाली बन सकते हो। स्पीकरों की संसार में कमी नहीं है, वक्ताओं की कमी है संसार में। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के टीचर से मुलाकात। वो एक्टर्स, संसार के फिल्म के एक्टर्स रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, परंतु अशरीर नहीं बना सकते। क्या फिल्मों में काम करने वाले अशरीर बना सकते? अपनी भावनाओं से, इमोशन से हंसाएंगे, रुलाएंगे, परंतु आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। ये तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान का चिंतन है। तो कौन सा रंग आत्मा को लगाना है? मनन का रंग, ये तीसरा रंग। चौथा रंग न्यारेपन का रंग। चौथा रंग न्यारेपन का रंग। तुम्हारी श्रेष्ठ जीवन है, अलौकिक जीवन है। वो लौकिक तुम अलौकिक, तुम जो कहते हो, तुम जो सोचते हो, तुम जो बोलते हो, वैसा नहीं होगा जो वो करते हैं। तुम्हारा सब कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि तुम में न्यारापन है। क्यों? क्योंकि तुम में लगाव नहीं है। अगर लगाव है किसी भी वस्तु से तो बाप का प्यारा नहीं बन सकते। और बाप का प्यारा बनने की विधि क्या है? न्यारे हो जाओ, डिटैचमेंट। जो डिटैच है वही लविंग है, जो न्यारा नहीं वो प्यारा भी नहीं। जहां पंख चिपके हैं और जहां रस्सियां बंधी है वो भगवान के प्यारे नहीं हो सकते। उसे वो प्यारा है, उसे वही पसंद है जो वो न्यारा है, और उसे वही पसंद है जो न्यारे है। और प्यारे बनने की विधि भी क्या है? न्यारापन, अलौकिकता, न्यारापन। जैसे कोई चीजें तुम देखते हो तो देखते हो कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं लेना है, खाना है। उदाहरण दिया पापा ने, कहां आत्मा फंसी है सोचो और स्वयं को न्यारा करते चलो। जितना जितना डिटैचमेंट होगा, इमोशनल डिटैचमेंट, इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट, भावनाओं में भी न्यारापन, संबंधों में भी न्यारापन, फैमिलियरिटी भी कम नहीं कल की साकार मुरली आने वाले कल की। तो चौथा रंग कौन सा लगाएंगे आत्मा को? न्यारेपन का। पांचवा रंग सात का रंग, परमात्मा सात का रंग, बाप के सात का रंग। जब भगवान सात है तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, लिस्ट गिनाई है बाबा ने, माला माल हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बोलो ना। वो सब हो गया, माला माल संपन्न, और वो सब हो गया, और क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें गिनाई है, जल्दी जल्दी बोलो। क्या विजयी हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, नो कंप्लेंट, कंप्लीट हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, नो क्वेश्चन, नहीं तो क्यों नहीं लगेगी, क्यों की क्यों, वो क्यों भले लगाओ, कौन सी क्यों लगाओ, भक्त और प्रजा की, परंतु ये क्यों नहीं लगनी चाहिए, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कब कहां, ये क्यों ना लगे। सत यदि वो है तो आत्मा तृप्त रहेगी, भरपूर रहेगी, कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई विघ्न नहीं आएगा, निरंतर विजयी होंगे, साथ है और साथ चलेंगे, मदद है उसकी, तो क्या होगा, मुश्किल नहीं लगेंगी चीजें, हर परिस्थिति कैसे लगेगी, साइड सीन, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है। अंधेरी रात अकेला व्यक्ति जा रहा है, परंतु यह निश्चय कि कोई साथ है निश्चिंत कर देता है उसको। भगवान छत्र छाया बनकर साथ चल रहा है। मोहम्मद पैगंबर के लिए दिखाते हैं, जब वो रेगिस्तान से चलता था तपती धूप में, तो बादल उसके ऊपर ऊपर चलते थे उसको छाया देने के लिए। वो बादल पर किसी और को दिखाई नहीं देते थे, उसे जरूर दिखाई देते थे, ऐसा सूफी कहते हैं। जहां जहां मैं चल रहा हूं, परमात्मा छत्र छाया साथ साथ चल रही है। कितना सुंदर संकल्प है, भगवान साथ है, डरने की क्या बात है। तो कौन सा रंग लगाना है आत्मा को? परमात्मा साथ का, बाप के साथ का, निरंतर वो साथ है। जहां मैं हूं वहां वो है। When I forget that God is my supreme companion, I feel lonely. अंग्रेजी में कहावत है कि जब मैं ये भूल जाता हूं कि मेरा साथी, परम साथी भगवान है, तभी मुझे अकेलापन, उदासी महसूस होती है। जब मुझे याद है कि वो निरंतर साथ है, मैं शक्तिशाली हूं, उसकी विस्मृति और शक्ति गई। छठवां रंग, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तीन चीजें, परिस्थिति, पेपर और विघ्न। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए तीनों चीजें क्या है? पेपर क्या है? साधन, पास। पेपर साइड सीन नहीं, पेपर है पास करने का, आगे बढ़ने का, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेगी, तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान की डिग्री मिलेगी, विघ्न विनाशक की डिग्री मिलेगी। एक बार कभी स्लोगन में कहा था, गुड साइंस है, परिपक्व की निशानी क्या है, अभी अभी स्लोगन था, कल था, हर्षित होना है, परिपक्व होना है, निशानी परीक्षाओं को क्या समझो, गुड साइंस, शुभ, तो हर्षित रहेंगे, तब परिपक्व रहेंगे। ये स्पिरिचुअली मैच्योर्ड सोल की निशानी है। पेपर से घबराएंगे नहीं। विघ्नों से क्या समझेंगे, उन्नति का साधन है। जब इन तीनों से ही आत्मा गुजरती है, विघ्न, परिस्थिति और पेपर, द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम विकास है। और जो आत्मा इससे भागती है, सोचती है ये चीज हमने कभी की नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको नहीं पार कर सकेंगे, ये पेपर हम नहीं देंगे, पेपर से गुजरने के बाद, विघ्नों को पार करने के बाद, परिस्थिति को लांघने के बाद, हम वो नहीं रहते जो परिस्थिति के पहले थे। द रिजल्ट इज ग्रोथ, हम शक्तिशाली बन जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं माइंड इज लाइक अ रबर, वन स्ट्रेच्ड इट कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज। मन जो है रबर की तरह, एक बार खींचो तो वापस अपना ओरिजिनल शेप नहीं, पर वो नहीं जाएगा। एक बार अनुभव ने उसको खींचा तो वो अब उसकी लेंथ बढ़ गई, अब वो और ज्यादा मजबूत हो गया। अब वो वही परिस्थिति दोबारा जब आएगी तब वो घबराएगा नहीं, उदास नहीं होगा। जिसके लिए परिस्थिति आ जाए तो क्या कहो, वाह परिस्थिति वाह, गुड साइन, एग्जाम क्लास आगे बढ़ रही है, भागने जाना है, पलायन का मार्ग नहीं लेना है, एस्केपिस्ट नहीं बनना है, स्पिरिचुअल एस्केपिस्ट। सातवां रंग कौन बताएगा, मुरली का लास्ट पार्टी, छठवीं पार्टी पर हमारा रंग सात, वरदानों का रंग। दो वरदानों का अनुभव करना है, कौन से, योगी भव और पवित्र भव। योगी भव अर्थात निरंतर योगी, एक दो घंटे वाले योगी नहीं, सुबह अमृत वेला योग कर लिया और योगी और काम पूरा हुआ, ये वाले योगी नहीं, सतत योगी, निरंतर योगी, चलते फिरते योगी, रमता योगी, मस्त योगी, ऐसे योगी। और पवित्र, एक दिन भी अपवित्रता नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ मोह भी नहीं। यदि मोह है तो पवित्र कहेंगे, यदि मोह है तो किसकी लिस्ट में, अगर दो दो बाबा आ जाए और कहे इस लिस्ट में वो खड़े हो जाओ जो पवित्र है, इसमें जो जो अपवित्र है, तो हम कहां जाएंगे, पवित्र की लिस्ट में चले जाएंगे। पर पवित्रता की परिभाषा तो पता है ना, तो अभी एक सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थित होना, स्थूल देह को नीचे छोड़ देना, फरिश्ता रूप धारण करके सूक्ष्म वतन में पहुंचना, और यह सोचो और अनुभव करो कि भगवान ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा है और कह रहे हैं योगी भव, पवित्र भव, संपूर्ण पवित्रता और निरंतर योगी, यह अनुभव करना है। अगर एक दिन भी अपवित्र हुए तो पासपोर्ट कैंसिल, इसलिए बाप को सच सच साफ साफ बता दो, कल चलने वाली साकार मुरली है, बाप को सुना दो, छिपाओ नहीं, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। वर्षा, एक संकल्प करने को बाबा ने कहा, यदि पवित्र रहे तो क्या बन जाएंगे, आगे पूज्य, और योगी रहे तो शक्ति स्वरूप। एक संकल्प लेने को कहा है, एक प्रतिज्ञा, कौन सी, नव्यर्थ सोचेंगे, नव्यर्थ करेंगे, व्यर्थ की बीमारी को खत्म कर दो, सावधान, तब सफलता मिलेगी। एक प्रतिज्ञा विधि है मुरली में बाबा ने, तो ऐसे टोटल सात रंग। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जिनका इंद्रधनुष हमारे मन के आकाश में छा जाए, पहला स्व परिवर्तन का, उसमें चार बातें, पहली संपूर्ण स्वतंत्रता, दूसरी संतुष्टता, तीसरी तैयारी, चौथी अचलता, अडोलता, पहला रंग। दूसरा रंग साक्षी स्थिति का रंग, बार बार 24 घंटे में कम से कम दो बार ड्रामा की सारी 20-21 पॉइंट्स जो भी है सारी रिवाइज करना। तीसरा रंग मनन का रंग, सिमरन का रंग, एकांत में जाकर ज्ञान का गहराई से चिंतन करना। यही वास्तव में आत्मा में बल भरेगा। खाली बैठकर मुरली सुनना या पढ़ना या पढ़ाना, इससे शक्ति नहीं भरेगी। वो अपना नहीं होगा, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना गहरा मौन होगा और जितना गहरा एकांत होगा, उतना ही गहरा चिंतन होगा। नहीं तो उथला उथला था, सतही चिंतन होगा। अगला रंग न्यारेपन का रंग, स्वयं को अलग करते चलो, इन्वॉल्वमेंट्स, फैमिलियरिटी, घनिष्ठता, ज्यादा से बहुत मैत्री, टू मच अनफ्रेंड, बहुत फ्रेंड्स बना के रखे, अब अनफ्रेंड करो। नेक्स्ट परमात्मा साथ का रंग, कैसे बढ़े उसकी कुछ प्लानिंग बनाओ, कि कर्म करते समय उसकी याद बनी रहे, उसके साथ का अनुभव, उसके लिए क्या करूं, सोचो, प्लान बनाओ। अगला रंग मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परिस्थिति विघ्न और पेपर, साइट सीन, उन्नति का साधन, क्लास आगे बढ़ रही है, तीनों चीजें। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात ये सोचना नहीं है, सोचना बंद, सोचना अर्थात रुकना। मास्टर सर्वशक्तिवान आगे बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं है कभी। खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, ये मास्टर सर्वशक्तिवान का गीत है। अगला रंग वरदानों का रंग, तो ऐसे सात रंग आत्मा को लगाने हैं तो फिर एक सुंदर सा इंद्रधनुष निर्माण होगा। ऐसे स्वपरिवर्तन को तीव्र कर चलने वाली आत्माओं को ऐसी श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्माओं को ऐसी स्वयं की संपन्नता से सेवा के कार्य में संपन्नता लाने वाली आत्माओं को ऐसी साक्षी स्थिति में स्थित रहे हलचल के दृश्य को, हलचल के पार्ट को रमणीक पार्ट समझ देखकर चलने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।